حتى اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے. کس کو؟ جو نبی کے خلاف باتیں کرتے تھے، اللہ کے دین کے دشمن، اسلام کے دشمن، نبی کے دشمن. آپ آخری دم تک پیغام پہنچاتے ہی رہیں، صرف نظر کریں ان کی عادات سے، ان کی غلطیوں سے پیچھے کر دیں، آپ ان کو اچھے اخلاق کی مار ماریں، کیونکہ اچھے اخلاق میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ بندہ دشمنوں کو دوست بنا لیتا ہے. تو جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو ان کی آنکھوں پہ پڑا ہوا پردہ خود بخود چھٹ جائے گا. کیا کہتا ہے گناہگار دنیا سے جاتے ہوئے؟ رب ارجعونی، اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا، ربی میرے رب، واحد ہے نا، لیکن ارجعونی مجھے لوٹا دے. اب دیکھیں لفظ ہونا چاہیے تھا ارجعی، لیکن اون جمع ہے. اس کو اگر اصل سے ذرا کھول کے دیکھ لیں نا تو رجع، را جیم عین، اردو میں کہتے ہیں نا رجوع کرنا، وہی لفظ ہے، مبدا کی طرف لوٹنا. رجوع کیا ہوتا ہے؟ جدھر سے آئے تھے اسی طرف پلٹ جانا. ٹھیک ہے، اب لفظ ہونا کیا چاہیے تھا گرامر کی روشنی میں؟ ارجعینی، نون کے نیچے یا آنی چاہیے تھے آگے، لیکن یہاں آ رہا ہے ارجعونی، جمع کا صیغہ واخد کی جگہ. کیوں؟ نمبر ایک کہ موت کے فرشتے مجھے پیچھے چھوڑ دیں، اور دوسری بات یہ کہ بار بار کہے گا، ریپیٹیشن، ایک دفعہ نہیں کہے گا کہ مجھے واپس چھوڑ دے، بلکہ بار 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 کہے گا اے میرے رب مجھے واپس دنیا میں پہنچا دے، مجھے واپس دنیا میں پہنچا دے. آپ دیکھیے یہ موت کی حسرتیں ہیں. جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا، اس وقت لگتا ہے کہ میں اب کیا لے کے جا رہا ہوں، کیا دے کے جا رہا ہوں. تو فرمایا کہ وہ اس وقت کہے گا مجھے چھوڑ دے. اب یہ کون کہے گا؟ نمبر ایک، اعتقادی کافر بھی کہے گا، یعنی کہ جو کفر پہ تھا، اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، اور عملی کافر بھی کہے گا. کفر ویسا نہیں تھا، اللہ کو مانتا تھا لیکن عمل نہیں تھا. روایت میں آتا ہے کہ موت کے وقت مومن سے پوچھا جاتا ہے کیا واپس جانا چاہتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میں غموں اور دکھوں والی اس دنیا میں کیوں جاؤں، مجھے تو میرے رب کے پاس پہنچا دو. مومن اس دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتا، کیونکہ اس کا اصل ٹھکانہ تو آگے ہے، یہاں تو وہ صرف وقت گزارا. سفر میں کون زیادہ دیر رہنا چاہتا ہے؟ ہر ایک چاہتا ہے اس کو منزل ملے. تو مومن کے لیے یہ دنیا ایک سفر ہے، وہ اس کی منزل یعنی اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتا ہے. جبکہ فرمایا کہ کافر کو کہا جاتا ہے کہ کیا دنیا میں واپس جانا چاہتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہاں، رب ارجعونی، مجھے واپس بھیج دیں. کیوں بھائی، کیوں واپس آتے ہو؟ پڑھ لیں پھر اس پہ اکٹھی بات کر لیں گے. لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کچھ اچھے عمل تو کر لوں. فیما، اس میں جو، ترک تو، جو میں چھوڑ آیا ہوں. یہ ترک تو کے دو معنی لکھ لیں. نمبر ایک، اس دنیا میں مجھے واپس بھیج دے جس کو میں چھوڑ آیا ہوں، اور دوسرا مطلب یہ ہے وہ عمل کروں جو میں نے چھوڑے ہوئے تھے، پوسٹ پونڈ نیکیاں، جن کو میں نے بار بار پوسٹ پونڈ کیا. کروں گی، ذرا حج کر لوں، اچھا رمضان آ جائے، اچھا گرمی آ جائے، پھر سردی آ جائے، پردہ کرنا ہے سردی آ جائے، نماز شروع کرنی ہے گرمی آ جائے، نیکی کرنی ہے ذرا شادی ہو لے، توبہ کرنی ہے ذرا رخصتی ہو لے، چلو یہ کرنا ہے بچہ ہو لے، بوڑھے ہو لیں، 40 کے ہو جائیں. ترک تو، یہاں تک بات پوری ہو گئی، ادھر آپ چھوٹا سا کوما لگا لیں. آگے آ رہا ہے کلا، ہرگز نہیں. اس کلا کے بھی دو معنی ہیں. نمبر ایک، اس کو واپس ہرگز نہیں بھیجا جائے گا، یعنی جو اس کی خواہش ہے نا رب ارجعونی کی، کلا، اور کلا آپ کو پیچھے کئی بار بتایا، نیور نیور اٹ ول ہیپن، ہرگز نہیں ہم ان کو واپس کریں گے. اور دوسرا اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ کلا، یہ چلا بھی گیا تو ہرگز وہ کام پھر بھی نہیں کرے گا جو کہہ رہا کہ کروں گا. کیوں؟ انہا کلمتن ہوا قائلہا، یہ تو ایک محض بات ہے جس کو یہ کہنے والا ہے. زندگی میں کئی بار یہ موت کے منہ سے بچا تھا، اس نے وہاں بھی یہی کہا تھا، اللہ اس بیماری سے بچا لے، میں بہت اچھی بن جاؤں گی. پھر اللہ نے بچا دیا، پھر یہ ویسے کا ویسا ہو گیا. اس کا حادثہ ہوتے ہوتے بچا، اور یہ اس حادثے کے اندر بچ گیا، تو اس نے کہا اللہ صحت دے دے، ٹانگ ٹھیک ہو جائے، بازو ٹھیک ہو جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، ہو گیا. لیکن اس نے پھر کچھ نہیں کہا. کیا ہم سب نے کبھی اپنے خود سے کیے ہوئے وعدوں کو سوچا؟ آج تک خود سے کیا کیا وعدے کیے، رمضان میں کیا کیا وعدے کیے تھے خود سے، याद है हज पे क्या वादे किए थे खुद से, हॉस्पिटल में बिस्तर पे लेटे हुए क्या वादे किए थे खुद से, बच्चे की पैदाइश के वक्त क्या वादा किया था तकलीफ के मारे, किसी को याद है? हुआ कायल, हुआ कहते ही रहते हैं हम, कायल हैं बस बातों के, माइल कोई नहीं है। याद रखिए जितनी आसानी से हम खुद से वादे करते हैं ना उतनी आसानी से छोड़ देते हैं। कभी अपनी ज़िंदगी का लम्हा सोचिए, और हर एक पे आता है, देखिए मेरे पे भी आते होंगे आप पे भी आते हैं, जब हमारा कोई वक्त रुका होता है खुशी नहीं मिलती। मिसाल आप शादीशुदा हैं तो बच्चा नहीं होता, बच्चा नहीं है, बच्चा 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 बच्चा, ऐसे लगता है सारी दुनिया की खुशियाँ बच्चे में। अब आप सोचिए अल्लाह ने आपको उम्मीद दे दी, शादी नहीं होती लड़कियों की, 20, 22, 24, 25 साल उम्र होगी, शादी शादी, ऐसे लगता है शादी हो जाए अल्लाह की नेमत होगी, बस पता नहीं मैंने तो क्या कर देना, अल्लाह दे देता है होगी शादी। और इसी तरह की बाकी कहानी है, जॉब नहीं जॉब नहीं जॉब नहीं, जॉब मिल गई देखना मैं कितनी अच्छी हो जाऊँगी। असल में नमाज़ इसलिए नहीं पढ़ता कि स्ट्रेस रहता हूँ, नमाज़ में दिल नहीं लगता क्योंकि तफक्कुरात बहुत हैं, बस अल्लाह माली तौर पे सूदा कर दे फिर देखना मैंने कितना नेक बन जाना है कि नहीं, हम सबके साथ। और जब वो सब होता है उसी का नाम लेके हम अल्लाह को छोड़ते हैं। अब जॉब पे थक जाता हूँ तो मैं नमाज़ कैसे वक्त पे पढ़ूँ, अब मैं जॉब करूँ कि वहाँ उठ के जोहर की नमाज़ पढ़ूँ, अब मैं शौहर को खुश करूं कि मैं नमाज़ पढूं और मैं बच्चे को देखूं, मैं तो बच्चे में फिर के थकती रहती हूं, मैं नमाज़ कैसे पढूं। यानी हमारा हाल उस नाशुक्र इंसान वाला है जो मालिक हमें खुशियां देता है, उन खुशियों को पाकर उसी से मुंह फेरते हैं, इससे भी ज़्यादा कोई नमक हराम हो सकता है? सारी ज़िंदगी जिसको पीछे डालते हैं ना वो रब और रब का काम है, रब की बात है, और एहसान जताते हैं वल्लाही उस रब के ऊपर, कितना एहसान कर रही हूँ कि मैं तेरा दीन सिखा रही हूँ, तेरी किताब पढ़ा रही हूँ, देख मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ, अब तुझे मेरी हर बात माननी पड़ेगी ना उस वेला। याद रखिए अंदर से नहीं टूटेंगे ना तो ये कुरान आपको कुछ भी नहीं देगा, सिर्फ एक कोर्स है जो आपका पूरा होगा और आप रुख्सत हो जाएंगे और शायद हमेशा के लिए रुख्सत हो जाएं, लेकिन ये वो रुख्सती है जिसके बाद दुनिया में आना नहीं है। और इंसान उस वक्त कह रहा कि रब इरजिउनी लअल्ली अअमलु सालिहन, अल्लाह अमल कर लूँ अच्छे काम करा लें। हदीस में आता है कि मन अहब्ब लिक़ा अल्लाह, वो जो अल्लाह से मुलाकात का इंतज़ार करता है, अहब्ब अल्लाह लिक़ाहु, अल्लाह उससे मुलाकात का इंतज़ार करता है। वरना याद रखिए कि आज इस दुनिया से आँख बंद तो कल उधर जब आँख खुलेगी तो होगा क्या, वह मिम वराहिम बरज़खुन इला यौमी युबअथून, और इनके पीछे एक बरज़ख है, और बरज़ख कहते हैं पर्दे को, ये रुबाई है, बाराज़ाखा पर्दा, और इस्तलाह में कहते हैं मरने से लेकर क़्यामत के दिन कब्रों से निकलने के दरमियान का वक्त, कब्र में गुजार लें तो भी बरज़ख है, परिंदे नोच के खा गए तो वो भी बरज़ख़ है, डूब के मरे तो वो पानी आपकी बरज़ख़ है, जल के राख हो गए तो वो राख आपकी बरज़ख़ है, लेकिन ये मरने के बाद वापस ना आने वाला वन वे रोड है, इला यौम युबअथून, बस अब तो अगले जहां में उठाया जाएगा, जब मौत के बाद बास बादल मौत होगा फिर तुम उठाए जाओगे, और वहां ये बात होगी, वहाँ जाके तुम्हें इस चीज़ का पता चलेगा कि ज़िंदगी किन ना काम आने वाली चीज़ों में गुजारती, किन चीज़ों को बुनियाद बनाया। आप देखिए मैं और आप वक्त की थैली लेकर हाथ में निकलते हैं रोज़ सुबह, क्यों हम काम की चीज़ें उसमें नहीं डाल पाते, क्यों हमारा वक्त बेकार चीज़ों में लग जाता है, क्योंकि हम अपने इस वक्त की कीमत नहीं पहचानते। किस चीज़ की ख्वाहिश कर रहे हैं मरने वाला, लअल्ली अअमलु सालिहन, तो सवाल पैदा होता है कि हमें पता भी है, चाहते भी हैं, इसके बावजूद अमूमन लोग लंबी उम्र मिलने के बावजूद अमल क्यों नहीं करते, तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात लिख लीजिए। नंबर एक, इल्म की कमी। इल्म ही नहीं है कि ये नेकी का काम है, 10 दफ़ा तर्जुमा याद करना ये इतना मुझे मिलियनेरियन बना देगा कि दूसरे लोग क़्यामत के दिन मेरे हाल पर रश करेंगे, इल्म ही नहीं है, लाशौरापन, हमें पता ही नहीं है, वैल्यू नहीं है, इल्म को या वैल्यू कह लें, सिर्फ कानों की हद तक पता होता है लेकिन दिल को यकीन नहीं है कि इससे मुझे मिलना क्या। दूसरी वजह, सुस्ती। پتہ بھی ہے سب ہے لیکن سست ہیں، کبھی اپنے بولے ہوئے لفظ گنیں اور اس کو ایکول ٹو کر کے اللہ کے الفاظ جو ہم بولتے ہیں دن رات میں اس سے ٹیلی کریں تو آٹے میں نمک قرآن ہے، اور لوگوں سے پٹ پٹ بوتے بولتے ہی رہتے ہیں، اللہ ہماری اصلاح کر دے. تیسری وجہ لاپرواہی، کیئر لیس ایٹیٹیوڈ. ہے نا نیکیاں، اب تو کورس بھی پورا ہونے والا ہے، اب تو قرآن بھی پڑھ رہی ہوں، اب تو میں حدیث بھی پڑھ رہی ہوں، دیکھو اتنی نیکیاں، اب بلا وہ دیکھو فلاں فلاں وہ تو کچھ بھی نہیں کرتی، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتی، میں تو اب نماز بھی پڑھ رہی ہوں. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے، اور یہ بہت ساروں کی وجہ ہوتی ہے، کیئر لیس ایٹیٹیوڈ. جیسے لوگ چینج واپس نہیں لیتے نا، کہتے رکھ لو اٹس اوکے، بوجھ پڑے گا پرس میں، اسی طرح بعض جب ہم نیکیوں کا چینج نہیں لیتے، بڑے بڑے کام بہت شوق سے کرتے، روتے ہیں ہائے یہ ہزاروں لگا کے ہم نیکی کریں گے اور مفت بڑی نیکی ہاتھ میں ہوتی ہے اس کو نہیں کرتے. دور کوئی چیز ہو تو ہو کے بھریں گے، کبھی موقع ملے وہاں جائیں اور یہ کام کریں، اور وہی کام آپ کی ڈور اسٹیپ پہ ہو تو آپ کہتے ہیں چھوڑو اب ان کی کیا بات سننی. یہ انسانوں کی عادت ہے. پھر اگلی وجہ ہوتی ہے مناسب ماحول کا میسر نہ ہونا. دیکھیے ہر ایک کی وجہ فرق ہوگی نا، کچھ لوگ سب کچھ چاہتے ہیں، علم بھی ہوتا ہے، سستی بھی کوئی نہیں، لاپرواہ بھی نہیں، سرکمسٹانسز ہی سوٹیبل نہیں ہے. پھر اسی طرح غیر ضروری اور غیر مفید کاموں میں مصروف رہتے ہیں تو عمل صالح کا وقت نہیں ملتا. پھر ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے، اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کا ہی نہیں علم کہ اللہ نے مجھے کیا کیا سکلز دے کے بھیجا، میں کتنے عمل صالح کر سکتی تھی پتہ نہیں. اور پتہ چلے گا قیامت کے دن جب اٹارا کھلے گا اور فرشتے کہیں گے اللہ یہ ہے اس کے دماغ کا خانہ جو اس نے کھولا ہی نہیں ساری زندگی، اس کے ساتھ ہی قبر میں آ گیا. ایک دفعہ میں نے ایک رپورٹ میں پڑھا تھا کہ جب کوئی انسان مرتا ہے، ایوریج انسان جیسے ہم سب ہیں، کوئی سائنٹسٹ نہیں، کوئی بڑے لوگ نہیں، عام لوگ جب مرتے ہیں تو وہ اپنے برین کا 95% حصہ اپنے ساتھ قبر میں لے جاتے ہیں. پوری زندگی میں 60-70 سال میں ایک ایوریج پرسن صرف 5% آف برین یوز کرتا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کر کیا سکتے تھے. اور یہ ڈسکوری چینل تو ہم نے جوائن ہی نہیں کیا جس نے ہمارے اندر کی خوبیاں بھی کھولنی تھی. جس طرح قرآن ہماری خامیاں کھولتا ہے اس طرح ہماری خوبیاں بھی کھولتا ہے، ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. پھر اس طرح ایک اور بہت بڑی وجہ، دل کی سختی، بے حسی ہے، بس ہوگا دیکھیں، پتہ بھی ہے کریں، ڈھیٹ پن ہے، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں. ایک اور بہت بڑی وجہ، بلکہ بہت ہی بڑی وجہ، لوگوں کا ڈر. کتنے عمل صالح کے موقع ہم چھوڑ دیتے ہیں صرف اور صرف لوگوں کے ڈر سے، لوگ کیا کہیں گے. پھر نویں وجہ، گناہ. ہر گناہ نیکی کے راستے کی رکاوٹ ہے. وہ یاد کر لے امام شافی کے استاد کا شعر کہ العلم نور، علم تو ایک نور ہے، اور اللہ یہ نور گناہ گار دل میں نہیں ڈالتا. ہمارے گناہ میں روک لیتے ہیں بہت ساری نیکیوں سے، سزا ملتی ہے اللہ کی طرف سے. پھر اسی طرح ترجیحات کا قائم نہ ہونا، یعنی پرائیورٹائز نہ کرنا نیکیوں کو، لیسٹ پرائیورٹائز تھنگس میں کھوئے رہنا اور اتنی پیاری چیز کو پیچھے ڈال دینا. پھر ایک اور بہت بڑی وجہ، ہم اللہ سے مدد ہی نہیں مانگتے. ربی اوزینی انشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. اللہ سے توفیق ہی نہیں مانگتے بڑے بڑے کاموں کی، چھوٹے کاموں پہ خوش ہیں اور ڈر رہے ہیں کہیں اللہ مجھ سے بڑا کام نہ لے لے. نہ 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 سوری، گھر میں ریئیکشن بہت ہوگا، سوری. یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ تیز چلنے والوں کے آگے سے لوگ ہٹ جاتے ہیں. گاڑی تیز چلتی ہے نا تو آپ کے آگے کوئی نہیں کھڑے ہوگا، آپ سب سے آگے ہوں گے. اور گاڑی کی سپیڈ کم کر دیں تو ہر بندہ جو ہے نا آپ دیکھیے گا آپ کے آگے آ جائے گا. جتنا نیکیوں میں بھاگیں گے اتنی آپ کی ریئیکشن، آپ کی مخالفتیں، آپ کے گھر کے ماحول آپ کے موافق ہوں گے. اور ٹپک ٹپک ٹک 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 کھڑے رکتے چلتے جاتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ابھی خود ہی نہیں جمی ہوئی تو ہمیں انہوں نے کیا کہنا ہے. تو لہٰذا اللہ سے مدد نہیں مانگتے. پھر ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ اس نیک عمل کی اہمیت ہی معلوم نہیں ہوتی کہ اس کے کرنے سے مجھے قیامت کے دن ملنا کیا. پھر اسی طرح ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ اس نیکی کی وجہ سے جو ریئیکشن آتا ہے، جو مشکلات آتی ہیں، اس پر ہمیں قابو پانا نہیں آتا، ہینڈلنگ نہیں آتی ہمیں، یعنی سرکمسٹانسز اور سچویشن کو ہینڈل نہیں کر پاتے. اور ایک بہت ہی بھونڈی وجہ یہ ہے کہ اپنی موجودہ حالت اور عمل پہ راضی ہیں، چلو نہ دوسروں سے تو اچھا ہی ہے نا. اب دیکھو میری بہن نے تو ابھی قرآن ہی نہیں ٹھیک پڑھا، مجھے تو ماشاءاللہ اتنے سارے یاد ہو گئے. اور ایک اور وجہ، और इस तरह की बहुत सारी वजूहत आप भी ढूंढ सकते हैं। और वो क्या है कि नेकी के मौके की कदरदानी नहीं करते, नकदरापन, राजी नहीं है अल्लाह की रज़ा पे कि उसने हमें नेकियों के लिए चुना। अब तो कुरान सिर्फ आपसे बोलेगा, अब बाकी इर्द गिर्द वाले छट गए, अब आप हैं और आपका रब है। जिस शहर में से अल्लाह ने आपको चुना, इसकी वैल्यू ही ना हो, बस ठीक है जो होगा देखेंगे। फिर इसी तरह एक और वजह, दो तीन और जहन में हैं, वो भी लिख लें। अल्लाह ताला से गलत तवक्कोआत का लगाना, देखना मुझे तो जन्नत मिल जानी, मैंने जाके एक स्माइल देना है, ओ अल्लाह जी, बस अल्लाह जी ने कहना जाओ ले लो, छूटी उम्मीदें अमल। फिर एक वजह है टालम मटोल, डिलेड एटीट्यूड। फिर एक वजह है दूसरों पे डाल देते हैं अपने कामों को, इनकी वजह से नहीं करती, और शायद ये हमारे एशियन कल्चर की सबसे बड़ी वजह होगी। और एक बहुत बड़ी बात है, और वो क्या है कि नेकियों के फौरी नतायज नहीं नज़र आते हैं, और हम नतायज फौरी चाहते हैं, जिसकी वजह से फिर हम नेकियां कर नहीं पाते। और नुकसान क्या होता है, उल्टे पुल्टे काम करते रहते हैं और असल काम छोड़ देते हैं। आप देखिए कि ये सिर्फ काफिर की बात नहीं है, नाम निहाद मुसलमान भी कल यही कहेगा कि लालियामलसालहन, अल्लाह मुझे वापस भेज ताकि नेक काम करूं। आप देखिए कि आज अगर हम कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, कब्र में कितना वक्त होगा, सारा दिन बैठ के कोई तस्बीह पढ़ता रहे कब्र में, फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होगा, मोहलत ख़त्म, वक्त ख़त्म, कुछ कर भी लेगा तो कबूल नहीं होगा, इसलिए कि मरते ही गैब का पर्दा छट जाता है। मैं वराहिम बरज़खुन इला यौम युबसून, और हमारा इम्तिहान है युमिनूना बिलगैब का, बिन देखे काम करना है। मौत के साथ तो सारी हकीकतें खुलती हैं, जिस तरह आप देखिए कि पेपर आउट हो जाए तो क्या वो पेपर करने की इजाज़त देता है कोई? तो पेपर तो आउट हो जाता है मौत के वक्त। और याद रखिए ये सिर्फ मौत के वक्त नहीं आता कि रब्बिर जेऊनी लालिया मलसालियत, बल्कि ज़िंदगी में कई मौके आते हैं और अल्लाह लाता है कि अब संभल जाओ, अब संभल जाओ। यही बात सूरत मुनाफिकून आयत नंबर 10 और 11 में हम पढ़ेंगे, अल्लाह ताला कहते हैं वन फिकू मिम रज़क़नाहुम मिन क़ब्ल याद याहदकुमुल मौत, खर्च करो इसमें से जो कि हमने तुमको दिया इससे पहले कि तुम्हारी मौत आ जाए, और उस वक्त तुम कहो कि लौला खरतनीला जलिन करीब, मुझे थोड़ी सी मोहलत तो दे दो फरिश्तों, क्यों? ताकि मैं माल बहुत सारा सदका करूं और वो काम कर लूं जो छोड़े हुए थे, अच्छे काम करूं। दो बातों की हसरत करता है बंदा मरते वक्त, क्या कि मुझे मोहलत दे दो, लौला खरतनीला जलिन करीब, ताकि फसद्दक वकुम मिन सालिहीन, तो आज फ़ायदा कल फ़ायदा नहीं होगा। सूरत अलनाम में भी हम पढ़ चुके, वलौ रुद्दू लआदू, अगर इनको बिल फर्ज अल्लाह वापस भेज भी दे तो क्या ये अच्छे काम करेंगे? नेवर, लआदू वही कुछ करेंगे जिसके आदी थे, जिसकी इनको आदत पड़ी हुई थी। सूरत इब्राहिम आयत 44 और सूरत सजदा आयत 12 में भी यही बात है कि क़्यामत के दिन सर झुके होंगे, वलौ तराइज़िल मुजरिमूना नाकिसुरूसहुम इंदा रब्बिहिम, काश तो देखे कि मुजरिम उस दिन अपने सर रब के सामने गिराए होंगे, झुकाए होंगे। उस वक़्त पता चलेगा ना कि हम क्या क्या चीज़ें अपनी मर्जियों की करते थे। तो हम सब अपने ऊपर गौर करें, नेकियों के कितने मौके छोड़े और कितने पकड़े, वरना याद रखें कि शैतान इंसान से गलत काम कराता है। हज़रत जाबिर कहते हैं कि शैतान तुम्हारे हर हाल में और हर काम में तुम्हारे पास आता है और मुदाहलत डालता है और गुनाहों का वसवसा डालता है, ऐसे में इंसान अल्लाह की मदद से ही काबू पा सकता है। अब अगर आप पीछे वाले मज़मून तक इस सारे को एक साथ देख लेना, तो शैतान की उकसाहटें इंसान से नेकियां नहीं कराती। इसी तरह से आप देखिए कि शैतान की ख्वाहिश क्या कि लोग दुखी रहें, क्योंकि उसके अपने नसीब में गम है, तो वो लोगों को गमज़दा करने के लिए दूसरों से भी बदगुमान करता है और नेकियों से भी दूर करता है। अल्लाह अकबर, हर चीज़ हमारी ज़िंदगी की जो है वो हमारे लिए एक बात है। फिर ये तो शैतान की उकसाहटें थी ना, इस पर चंद दुआएं और थी, पहले शुरू में मैंने नहीं बताई, लेकिन अब नोट करना चाहें तो कर लें। कभी भी आपका दिल नेकियों में ना लगे, ये जो कुछ भी अब पढ़ लिया है, इसके बाद अब मैं क्या करूँ, दुआएं मांगे। और दुआएं क्या मांगनी है कि अल्लाह जिस शैतान की वजह से मैंने नेकियां छोड़ी हुई है ना, तो मुझे उससे दूर कर दे। अल्लाह के नबी सल्लम एक दुआ कसरत से मांगते थे, बल्कि आपको शायद पता हो कि नमाज के आगाज़ में भी मांगते थे, और वो दुआ क्या थी, आऊज़ु बिल्लाहि, पढ़िए, अस्समील अलीम, आऊज़ु बिल्लाहि अस्समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। यानी इसका तर्जमा कि ये अबू दाऊद की रिवायत है किताबुस्सलात में और तिर्मिज़ी में भी है कि मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ जो असमी भी है और अललीम भी है, यानी जानता भी है और सुनता भी है। किससे, मिनश शैतानिर्रजीम, शैताने मरदूद से, यानी जिसके ऊपर पत्थर मारेंगे, मिन हमज़ी ही, ये हम्ज वही है जो यहाँ हमजात है, इसके वसवसों से, विस्पर्स, व नफ़्ख़ी ही, और शैतान की थूक से, और नफ़्सी ही, उसकी चूक से, यानी नफ़्ख़ी और नफ़्सी में म्यूज़िक भी आता है और शैतान की तरफ से जो टेम्पटेशन होती है ना, वो सब आता है। तीन दफ़ा अगर नमाज के आगाज़ में इसको पढ़ा जाए, यानी बिल्कुल दुआ इस्तफ्ताह के साथ लग के, बाज़ रिवायतों में आता है, इंशाल्लाह जब आप नमाज की पढ़ेंगे डिटेल्स तो उसमें आपको ये दुआ मिलेगी, नमाज नबी में भी मौजूद है और होपफुली किताबुस्सलात में भी मौजूद है। लेकिन इन चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए, और आप देखिए कि जितना ज़्यादा आप बचेंगे, अल्लाह की पनाह में आएंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। फिर दूसरी बात देखिए कि आयत 98 में हमने पढ़ा ना कि आउज़ु बिका रब्बी, रब्बी अल्लाह, तेरी पनाह में आती हूँ। तो अल्लाह की पनाह में आने से इंसान की और बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, इसीलिए बिस्मिल्लाह का कसरत से इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह के नबी की एक और दुआ मेरे साथ दोहरा लें, और ये ख़ास तौर पर दुआ इस वक्त आपको इसलिए बताई जा रही है कि ये शैतान का बंदे को मौत के वक्त में पेशेमान करने का मामला चल रहा है ना, कि मौत के वक्त करता है। तो दुआ बड़ी खूबसूरत है, साथ पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हरमी व आऊज़ु बिका मिनल हदमी व मिनल गरकी व आऊज़ु बिका अन यतखब्बतनी यश्शैतानु इंदल मौत। इसमें आपने देखा कि लफ्ज़ों से आपको तर्जमा तो समझ आ ही रहा होगा ना, कि अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं कि अल्लाह शैतान मुझे मौत के वक्त खबती कर दे, क्योंकि वो बड़ा सख्त वक्त होता है और उस वक्त शैतान बंदे के ऊपर काबू पाता है। फिर इसी तरह आप देखिए, डूब के मरने से, किसी चीज़ के नीचे आने के मरने से, और इस तरह की तकलीफ़ों से तो मुझे बचा। एक और दुआ भी अल्लाह के नबी रात के वक्त पढ़ते थे, कभी घबराहट में आँख खुल जाती थी तो आप दुआ करते थे, ये भी मांग लीजिए, बिस्मिल्लाही आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामति मिन गदबिही व इकाबिही व मिन शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीनी व अन यहदुरून। अल्लाह के नाम के साथ मैं पनाह मांगती हूँ, अल्लाह के सारे कलेमात के साथ, उसके गुस्से से, उसकी पकड़ से, उसके बंदों के शर से, और शैतान के वसवसों से, और इससे कि वो मेरे सामने हाज़िर हों। तो गोया कि आप देखिए कि ये दुआएं वाकई बंदे का हिस्सा है। हिस्नुल मुस्लिम में भी आपको ये दुआएं मिल जाएंगी इंशाल्लाह ताला, और अहसनुल बयान अगर आपके पास कुरान मजीद है तो उसमें भी इंशाल्लाह ये चीज़ें मिल जाएंगी कि किस तरह से अल्लाह ताला बंदे को शैतान के शर से बचने की दावत देते हैं। अब आप इन सब चीज़ों को अपने ऊपर लेकर सोचें। देखिए, हम में से कोई फरिश्ता नहीं है, और याद रखें कि हम में से किसी से शैतान मायूस भी नहीं है कि वो हमें नहीं बहकाएगा। हम सब के पास शैतान आता है, बस हमें उसको टैकल करना आना चाहिए।
अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ। मैं कोई चीज सोचती हूँ और अगर मेरे सामने लेके आ जाता है, मुझे भी पता है, मैं बहुत गुनाहगार, पर ये मेरे साथ हो रहा है। ये मैं आपसे शेयर करती हूँ और मैं 100% कनेक्टेड हूँ, बेशक मैं वहाँ अकेली पढ़ रही हूँ, एक टीचर उन्होंने मुझे दी हुई है, वो मेरा सबक सुनती है। जज़ाकअल्लाह खैर।
आप देखिए कि आपने एक साल में ये कुछ सीखा है ना, और दूर रह के सीखा है, बहुत सारे करीब रह के भी नहीं सीखते हैं। हाँ, और दूसरी बात है कि अगर ज़िंदगी का ये एक साल अगर आपकी ज़िंदगी से निकाल दिया जाए तो कितनी कमी है ना आपकी ज़िंदगी में। तो बात यही है कि जितना ज़्यादा हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा हम क़यामत के दिन खुश होंगे। आखिर तो कब्र में जाना ही है ना। कभी आपने सोचा कि सहाबा किराम को नेकियाँ करके भी चैन क्यों नहीं आता था? इसलिए चैन नहीं आता था कि उनको पता था कि वक़्त थोड़ा है, और अगर एक दिन भी कम मेरा हो गया और बग़ैर किसी नेकी के, तो मैं कल क़यामत के दिन क्या करूँगा। फिर एक और चीज़ ये देखिए कि अल्लाह ताला कहते हैं ना, मिम वराइहिम बरज़ख़, इनके आगे है। यानी मुझे ऐसे लगता है कि एक दफ़ा मौत की वादी में कदम रख दिया तो मौका ख़त्म, पर्दे के पीछे से जा। बस दफ़ा स्टूडेंट्स को बिठा दिया जाता है कि आपका टेस्ट होने वाला है, वो वहाँ बैठ के भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो ही एक बार उनके सामने पेपर आ जाए तो क्या उनको एक बार भी किताब खोलने का मौका दिया जा सकता है? नहीं देखते ना। तो जिस दिन किताबें ज़िंदगी बंद, उस दिन अल्लाह के सामने मामला ख़त्म। और हम सब के पास अब देखिए कि होश हवास वाले तीन मौके हैं। एक वो है जो हम गुजार रहे हैं, ये सबसे छोटा और आसान है। ये जो ज़िंदगी मेरी और आपकी गुजर रही है ना, ये हमारा होश का वक्त है, इस वक्त अमल करना है। इसके बाद दूसरा वक्त जिसका जिक्र इन आयात में आलम बरज़ख़, जिसको आप वेटिंग पीरियड कह सकते हैं, ट्रांजिट लॉन्च कह सकते हैं, इसमें भी बंदे को होश होगी लेकिन वो कर कुछ नहीं सकेगा। और उसके बाद हशर के मरहले, हमेशा हमेशा के लिए या तो जन्नत और या जहन्नम। जब इसको सामने रखेंगे ना तो नेकी करना आसान होगा। आज हम इस बहुत छोटे से टाइम पीरियड में अगर नेकियाँ कर लें तो ऐश वहाँ करेंगे, और अगर यहाँ ऐश किया तो हो सकता है कि वहाँ की तकलीफ़ें हों। और आप ख़ुद देखेंगे कि जिस वक़्त ये फ़िक्र आ जाती है ना, फिर उसके बाद इंसान अपनी फ़िक्र नहीं करता, दूसरों की फ़िक्र करता है। बस जब हमारे जहन में एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि हम तो औरतें हैं, कभी हम मर्द होती ना तो हम बहुत नेकियाँ करती क्योंकि हमारा बड़ा रोब होता। हालाँकि अगर आप देखें, इस्लाम कबूल करने वाली, आपको पता बिल तरतीब अगर देखें ना तो मुसलसल चार औरतें थीं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। इसी तरह हज़रत उमर की दो लौंडियाँ थीं, एक का नाम जुनीरा और दूसरी का कुछ और आता है, ये मुसलमान हो गई थी। और इसी तरह रज़िया नाम की एक औरत थी जो मक्का के इर्द गिर्द कहीं रहती थी, जब मुसलमान हुई तो उसके फौरन ही साथ ही उसने लोगों को दीन की तबलीग करनी शुरू कर दी। लोग तंग आ गए, इतना तंग आए कि एक दफ़ा एक काफ़िला वहाँ से गुजर रहा था, कहा इस लौंडी को ले जाओ, हमारी जान छोड़ दें। रस्सियाँ बांधी और ऊँट के ऊपर बांध कर उसको कहते, इसको जाके कहीं बांध दो, इसको खाना ना देना, ये फिक जाए, ये मर जाए, ये ख़त्म हो जाए। उन्होंने ऐसे किया, उसको ले गए। चौथे दिन जाके देखा उसको, जो इतने दिन की भूखी प्यासी थी, तो देखा तो उसके होंठ तर थे, ऐसे लग रहा था कि अभी उसको किसी ने पानी पिलाया। ये मंजर देखकर वो लोग जो उस पर जुल्म कर रहे थे वो भी मुसलमान हो गए। हमारे अंदर हरकत पैदा क्यों नहीं होती? पैदाइशी मुसलमान, हर रोज़ सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, क्लासेस लेते हैं, जुमे के खुतबे सुनते हैं, वजह क्या है कि आखिरत पर यकीन नहीं है। और दूसरी, फरेब सूदो ज़ियां है ज़िंदगी, इस दुनिया के धोखों ने किसी जगह का ना छोड़ा। कहते ना कि किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, उस आखिरत की फ़िक्र लगना कुछ और ही नेमत होती है, जिसको वो लग जाएगी उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। और हदीसों में बरज़ख़ का बहुत ज़्यादा ज़िक्र आता है, जैसे रिवायत में आता है कि शहीद का जो बरज़ख़ है ये जन्नत में गुज़रता है, सारा दिन उनकी रूहें जन्नत में खाती पीती चरती चुगती हैं, और सब परिंदों की शक्ल में अल्लाह ने उनको ढाला हुआ है, और रात को अल्लाह ताला के अर्श के नीचे लटकी हुई कंदीलों में आके सो जाती हैं। और उनको अगर कभी कहा भी जाए कि कुछ मांगो तो कहती हैं कि अल्लाह ताला एक बार फिर दुनिया में भेज और हम तेरे रास्ते में कटें और शहीद हों, और वो लज्जत जो उस वक्त आई थी उसको आज भी हम मिस करते हैं। एक तरफ कह के लाल लिया मलुसालहन तरदा हो, और एक तरफ वो है, वो कहते हैं एक दफ़ा फिर भेज, जो नेकी करके गए थे ना अल्लाह ताला हमें वापस उसी नेकी पे ले आ। तो ये फ़र्क है ना, ये शख्सियात का फ़र्क कब है, उनके अमल से फ़र्क है। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को हकीकत में इस चीज़ पे ले आए।
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون